ग्रंथ संता विलास में एक चैप्टर है भोगवाद स्थिति, उसका वचन नंबर 5 पढ़ा जा रहा है, फिर इस पर विचार होगा। पांच तात्विक शरीर रूपी संसार को धारण करके हरेक जीव निर्भय सुख की प्राप्ति की खातिर दौड़ रहा है। पांच तात्विक शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव निर्भय सुख की प्राप्ति की खातिर दौड़ रहा है, मगर छिन्न भंगुर इस देह की यात्रा में नाना प्रकार के शारीरिक भोग भोगता हुआ नित निराशा और प्यासा ही रहता है। यानी शारीरिक भोगों को पूर्ण करने की खातिर राजा राज कायम करता है, धनी धन को संचित करता है, परिवारी परिवार में चिंतावान रहता है, और भी जैसी जैसी कोई सामग्री सुख भोगों की एकत्र करता है उसका मुद्दा सिर्फ सत शांति ही है। मगर ऐसे अपूर्ण शारीरिक सुखों में बजाय शांति के अशांति को ही प्राप्त होता है, यह ही अद्भुत माया का जाल है। ऐसी जीवन यात्रा को सही समझना ही मानुष जन्म की सार है और सत शांति प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न है। सत्पुरुष हमारे जीवन जीने के तरीके को बता रहे हैं और उस जीवन जीने के तरीके को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो उससे प्राप्त क्या होता है, अर्थात एक असंतोष वाली स्थिति ही हमारी अंत समय में बनी रहती है और जीवन भर भी हम किसी न किसी कारण से असंतुष्ट ही रहते हैं। लेकिन जो हमारा गोल है या कि जो हमारी इच्छा है वो ये है कि हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हम संतुष्ट हो जाएं, जिसको शांति कहते हैं। तो मनुष्य चाहता तो शांति है, चाहता तो संतुष्टि है, लेकिन उसके जीवन जीने का तरीका ऐसा है जो इसको संसारी तरीका कहते हैं कि ये शांति नाम की चीज उससे गायब ही रहती है। जो मनुष्य भी सांसारिक जीवन व्यतीत करता है उस जीवन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और उसी के लिए पुरुषार्थ करता है। अब सवाल यह है कि सब कुछ करने के पश्चात भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, मैं संतुष्ट हुआ ही नहीं, असंतोष लेकर मुझको संसार से विदा होना पड़ता है, तो फिर कह रहे हैं ऐसी जीवन यात्रा को सही समझना ही मानुष जन्म की सार है। तो हमने जो वे ऑफ लाइफ जो है जीवन में धारण की है इसका ठीक ठीक विश्लेषण करना आध्यात्मिक तरीके से, या यूं कहिए कि सतविचार के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा या गुरु ज्ञान के द्वारा, तब जाकर हमारी बुद्धि में एक दूसरा रास्ता भी आता है जिसको हम सतमार्ग कहते हैं या धर्म मार्ग कहते हैं। कि एक सांसारिक मार्ग है, एक भोग इकट्ठे करना, उनको भोगना और संसार से विदा होना। तो भोग इकट्ठे करने में भी बड़ा प्रयास है, उनको भोगने में भी बड़ा प्रयास है, और सब कुछ प्रयास करने के पश्चात भी हमको पता है कि हमारे जीवन का अंत किस प्रकार होता है। जवानी छिन जाती है, बुढ़ापा दे दिया जाता है, बुढ़ापे के साथ रोग भी आ जाते हैं, बुढ़ापे के साथ निराशा भी आ जाती है, बुढ़ापे के साथ मौत की याद भी फिर आने लगती है कि अब मैंने जाना है। फिर जब पास्ट को देखता है कि मैं संतुष्ट तो पूरे जीवन में रहा ही नहीं, सारी जिंदगी में दौड़ ही लगाता रहा, संतुष्टि नाम की चीज तो मुझको मिली ही नहीं, तो इस निराशा को लेकर वो संसार से विदा हो जाता है। तो सत्पुरुष कहते हैं कि ऐसी जीवन यात्रा को सही समझना ही मानुष जन्म की सार है और सत शांति प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न है। तो ये जो सत्पुरुष के सत विचार हैं और सत्पुरुष का जो जीवन है वो आपको सत शांति प्राप्त करने का मार्ग दर्शाता है, चाहे गुरु के पूरे जीवन को देख लीजिए, बचपन से लेके अंत तक के जीवन को, उन्होंने एक काम के लिए ही जीवन जिया जिसको ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, और उसी का संदेश अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को दिया, और जो भी उनके संपर्क में आए या आज जो हम उनके वचन सुन रहे हैं या उस पर विचार कर रहे हैं, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है, बुद्धि ऐसा सोचती है कि काश यदि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। जैसे संसार में मैंने कितनी मेहनत की है, ऐसे ही इस प्रकार यदि इस मार्ग में मैं मेहनत कर सकूं तो फिर मुझको भी शांति जरूर मिल जाए। ये भावना उन लोगों के अंदर आ जाती है जो सत्संग का सही श्रवण करते हैं या सत्पुरुषों के ग्रंथों का सही स्वाध्याय करते हैं। तो कह रहे हैं कि पांच तात्विक शरीर रूपी संसार को धारण करके हरेक जीव निर्भय सुख की प्राप्ति की खातिर दौड़ रहा है, मगर छिन्न भंगुर इस देह की यात्रा में नाना प्रकार के शारीरिक भोग भोगता हुआ नित निराशा और प्यासा ही रहता है। यानी शारीरिक भोगों को पूर्ण करने की खातिर राजा राज कायम करता है, धनी धन को संचित करता है, परिवारी परिवार में चिंतावान रहता है, और भी जैसी जैसी कोई सामग्री सुख भोगों के एकत्र करता है, उसका मुद्दा सिर्फ सत शांति ही है, अर्थात संतुष्टि ही। तो मैंने अपना जीवन तो देखा ही है, कम से कम दूसरों को के बारे में सोचने में मैं असफल रह सकता हूं या गलत भी सोच सकता हूं, मेरा निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन अपने बारे में मुझे पक्का पता है। जब से मुझको अपने शरीर का होश आया है, अर्थात मेरी लगभग 5 साल की 6 साल की आयु होगी, तब से मैं जानता हूं कि हर दिन मेरा एक असंतोष लेकर बीतता है। प्रातः काल होने से लेकर रात्रि के सोने तक दिन में कितनी परेशानियां आती हैं, बच्चे भी हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, कोई इच्छा को परेशान करती है, उसके लिए रोते हैं, कलेश करते हैं, किसी बच्चे का स्कूल जाने को मन नहीं है, जबरदस्ती स्कूल भी जाना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, किसी बच्चे का स्कूल जाने की इच्छा है उसको स्कूल नहीं भेजा जाता, किसी के गरीबी के कारण नहीं भेज पाते, कोई असुरक्षा के कारण नहीं भेज पाते। तो हर मनुष्य की जो का जो दैनिक जीवन है बचपन से लेके बुढ़ापे तक का, वो आप देखिए कि असंतुष्ट ही वो रहता है। संतोषवान रहकर या संतुष्ट होकर या शांत होकर या यूं कहिए कि प्रसन्नचित्त होकर वो अपना दैनिक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, क्योंकि कर्म का बोझ होता है, जिम्मेदारियों का बोझ होता है। बचपन में उनकी बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठाता है, माता पिता उठाते हैं, अपनी भी उठाते हैं, बच्चों की भी उठाते हैं। और जब बच्चों को होश आता है अपने जीवन का, अपने विकास का, तब अपनी जिम्मेदारी वो खुद उठाने के लिए परेशान रहते हैं। तो कितना संघर्ष है, 5-6 वर्ष की आयु के बाद से देखिए आप, वहां से बच्चों को याद रहती है अपने जीवन, जब मैं 6 वर्ष का था उसके बाद से कैसा जीवन व्यतीत किया है। आज की डेट में मैं इसका एनालिसिस करना चाहूं तो एग्जैक्टली कर सकता हूं। तो जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको यह खुद ही पता लग जाएगा कि हर दिन का जो ग्राफ है मेरा, उसमें चैन कम था, बेचैनी ज्यादा थी। ये हर एक दिन का आपका ग्राफ बताएगा कि इसमें चैन कम था, यही कहिए सुख कम था और बेचैनी ज्यादा थी। तो सतपुरुष इस बात को एक विज्ञान के आधार पर कह रहे हैं कि मगर छिन्न भंगुर से देह की यात्रा में नाना प्रकार के शारीरिक भोग भोगता हुआ नित निराशा और प्यासा ही रहता है, और इसी निराशा और प्यास को पूर्ण करने के लिए आदमी बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है। उस लक्ष्य के बारे में कह रहे हैं, यानी शारीरिक भोगों को पूर्ण करने की खातिर राजा राज कायम करता है, धनी धन को संचित करता है, परिवारी परिवार में चिंतावान रहता है, और भी जैसी जैसी कोई सामग्री सुख भोगों की एकत्र करता है, उसका मुद्दा या उसका लक्ष्य सिर्फ सत शांति ही है, या यूं कहिए कि ऐसा संतोष जो दुख में ना बदले, ऐसा निश्चित जीवन जो अनिश्चय की हालत में मुझको ना ले जाए। अब बताइए, इस संसार में जब हर वस्तु परिवर्तनशील है, इस प्रकृति का विधान ही ऐसा है कि यहां निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, तो इस प्रकृति का जन्म कहां से होता है,
इस प्रकृति का जन्म वहां से होता है जहां से ये पांच तत्व, जहां पर ये पांच तत्व प्रेजेंट नहीं है। तो कहते हैं कि प्रकृति की रचना कहां से शुरू हुई, प्रकृति से सबसे पहले तीन गुण की रचना होती है, अर्थात प्रकृति का जो बोध इस जीव को होता है, एक्चुअली तो इसको समाधि में ही वो जीव बोध कर सकता है, नहीं तो पढ़कर ही सीख सकता है। गुरु तो उसका बोध करता है, उसका विज्ञान लिखता भी है, लेकिन हमारी बुद्धि से बाहर की बात है, क्योंकि प्रकृति में ये रचना हम अपनी बुद्धि के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। तो बुद्धि से ऊपर की जो स्थिति है, जिसको हम ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं, वहां से सबको जानता है कि प्रकृति की रचना कैसे आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले तीन गुण का स्रोत उदय होता है, जिसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और वहां से फिर पांच तन्मात्राएं उदय होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्थान पांच तन्मात्राओं से पांच तत्व प्रकट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उससे फिर ये सारी शारीरिक रचना, सारी प्रकृति की रचना फिर होती है। अब बताइए, प्रकृति में उस शांति के सागर से जो ईश्वर की स्थिति है या सत्पुरुष की स्थिति है, उस शांति के सागर से ये माया उत्पन्न हो रही है। तो माया का प्रारंभ कहां से हुआ, तीन गुणों से हुआ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसके आगे माया फिर फैलती है, फिर पांच तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिन तन्मात्रा को हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं। आंख से देखते हो तो रूप हो गया, नहीं हो गया, जिभ से आप स्वाद लेते हो, ये रस हो गया, नहीं हो गया, रस आ रहा है, त्वचा से स्पर्श करते हो, गंध, नासिका से गंध सूंघते हो, तो पांच जो हमारी तन्मात्राएं हैं, ये पांच ज्ञान इंद्रियों का बोध कराते हैं, या पांच ज्ञान इंद्रियां हमारी पांच तन्मात्राओं का बोध कराती है। और ये कहां से है, किसके गुण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व की प्रकृति है सारी सारी, यही पांच तत्व का मेरा शरीर है। अब विचार करिए कि जिस मेटेरियल से ये सृष्टि बनी है, उसी मेटेरियल से मेरा शरीर बना है, और चेतना से ऊपर है, ईश्वर शुद्ध चेतन रूप है ना, तो ईश्वर से ये जड़ प्रकृति या जड़ माया ये प्रकट हुई है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरी, कभी कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने, तो प्रभु की ही माया है, लेकिन मैं क्या गलती करता हूं, मैं प्रभु की माया के प्रति लालायित होता हूं, और प्रभु के प्रति मैं सोता रहता हूं, उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं। तो प्रभु शांति का सागर है और उसकी माया अशांति का सागर है, उसकी रचना ही ऐसी। तो सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, और तमोगुण क्या है। जैसे कि मान लिया एक व्यक्ति सुबह सोके उठता है, आप में कुछ लोग देखे होंगे सुबह आंख खुली तो एकदम से इतने एक्टिव होते हैं, नहाएंगे, धोएंगे, सब क्रियाक्रम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और उसमें मस्त रहते हैं, उनके चेहरे से ही पता लगता है ये बड़ा सतोगुणी इंसान है, ये बड़ा अच्छा इंसान है। और दूसरा आंख भी खुल गई फिर भी उठेगा नहीं, कहेगा थोड़ा और सो लूं, आनंद ले लूं, सो के उठने का भी आनंद लेता है वो, और फिर अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाता है। संसार की सोच है, आज मैंने क्या करना है, कौन से सुख के लिए मैंने साजो सामान इकट्ठा करना है, वो सारी क्रियाओं में लग जाएगा, जिसको रजोगुण कहते हैं। और एक तीसरा इंसान क्या है, तमोगुणी, उसको उठाओगे तब भी नहीं उठेगा, अब ये सोने दो बस, 8 बजे तक सोता रहेगा, 10 बजे तक सोता रहेगा, 11 बजे तक भी सोता रहेगा, उसको आगे के फ्यूचर का कुछ सोच ही नहीं है उसके अंदर, बुद्धि में अंधेरा छाया हुआ है, तमोगुण छाया हुआ है। तो आप देखते होंगे घरों में ये तीन तरह के लोग मिलते नहीं मिलते, तो प्रभाव किस चीज का है, शारीरिक रचना तो सबकी एक जैसी है, तो ये गुणों का प्रभाव किसमें है, ये बुद्धि के अंदर है। तो इस बुद्धि का नाम ही जीव है, जिसके लिए ये शरीर है, जो शरीर के द्वारा सुख भोगने की इच्छा करता है, वही तो मैं हूं। तो मैं चाहता तो हूं सुख, चाहता तो हूं शांति, लेकिन इस विज्ञान को, अपने ही विज्ञान को मैं नहीं समझने की कोशिश करता कि यदि मेरी सोने की ज्यादा आदत है तो ये तमोगुण होगा ना, और तमोगुण मानव जीवन को बर्बाद कर देता है। जिसने मनुष्य जन्म का वक्त सोकर बिता दिया तो क्या कहोगे उसको आप? वास्तव में जिसको अपने जीवन का होश ही नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य है भी या नहीं है, तो सीधा सीधा उसको पशु कह देते हैं, इसके अंदर सोचे कुछ नहीं। तो प्रकृति में ही ये तीन विकार उदय हो रहे हैं, इसलिए इसको माया कहा गया। और कबीर कह रहे हैं माया महा ठगनी हम जानी, जिसने माया के अंदर जीवन का लक्ष्य बनाया, इस माया में मैं सफल होऊंगा, माया में मैं बड़ा धनी हो जाऊंगा, माया में मैं बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, माया में मैं बड़ा नाम कमाऊंगा, जिसने माया में अंतर लक्ष्य बना लिया उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर दी। लक्ष्य तो बना लेगा वो, लेकिन विचार करो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वही ये वचन कह रहा है कि यानी शारीरिक भोगों को पूर्ण करने की खातिर राजा राज कायम करता है। एक राजा जो राज्य कायम करेगा कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितनों से लड़ाई करनी पड़ेगी इसको। राजा बनने के लिए विचार करो क्या कभी वो सुखी हो सकता है, और राजा बनने के बाद भी सोच लो राजा यदि बन गया तो राज्य की रक्षा करना अपने आप में कितना बड़ा काम, कितने दुश्मन उसके तैयार होंगे। राजा बनते ही राज्य उसका बनते ही चारों बॉर्डर पर उसके दुश्मन ही रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति खुद राजा बनना चाहता है और दूसरे को राजा देखना नहीं चाहता। क्यों देखना नहीं चाहता? क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरा ईगो सबसे महान है, तो ईगो जिसको सेटिस्फाई करता है, विकार जिसको सेटिस्फेक्शन देता है, तो आप विचार करो उसका पतन होगा या उत्थान होगा, वो चैन से जिएगा या बेचैनी लेकर जिएगा। तो कृष्ण के काल में देख लीजिए, राम के काल में देख लीजिए, ये तो राजा लोग थे, लेकिन क्या दुर्गति थी। राम के राज में ऐसा था राक्षसों की बाढ़ आई हुई थी, और कृष्ण के काल में बचपन से ही जन्म लेते ही राक्षसों से लड़ाई शुरू हो गई, कंस को मारा उन्होंने, और जब बड़े हो गए तो पांडवों का कौरवों का राजघराना में देख लो जहां से उनका संबंध था, क्या दुर्दशा हुई। कितने राजा होंगे उस समय, कितने बॉर्डर होंगे उसमें, कितने देश होंगे उस समय, कि हर देश का एक राजा था, और राज्य इतने छोटे छोटे थे, जैसे जिला बरेली है ये एक राज्य, पूरा का पूरा पूरा देश है ये हालत थी उस समय। तो आदिकाल से जब भी हिस्ट्री लिखी गई है, आप पढ़कर देख लो, विचार करके देख लो, कि जिस इंसान ने भी अपने आप को संसार में बड़ा बनाने की कोशिश करी उसने ही बड़े बड़े दुख सहन किए। एक राजा कितने दुख सहन करता है, कितनी चिंता फिक्र होती है उसकी, आप कल्पना कर सकते हो। एक भारत का प्राइम मिनिस्टर ही है, अब देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसका राजा कह लीजिए, पहले जैसे राजा होते थे आज प्राइम मिनिस्टर है। एक प्राइम मिनिस्टर बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर देश की रक्षा करने में क्या होता है, कितने दुश्मन तैयार हैं, जितने अपोजिट पार्टी के लोग हैं सारे दुश्मन ही तो हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, अच्छे गुण होंगे उसको भी छुपा के रखेंगे, जो अवगुण है या जो कमी है उसको उजागर करेंगे। तो आपका सगा है कौन यहां धरती के ऊपर, जिस देश के लिए आप अपना पूरा जीवन लगा रहे हो उसी देश के लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका अहंकार तो उनको लगाई पड़ा, इसको इसको तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, नाम हो गया इसका, है वो अहंकार, नाम नहीं हो रहा इसका, सत्य तो यह है कि वो बड़ी मुसीबत झेल रहा है, बड़ा बिजी रहना पड़ रहा है, सोने तक का उसके पास वक्त नहीं होता, तो सुख कब होगा? तो सुख एक हवा मात्र है, इसकी वास्तविकता देखने को नहीं मिलती। तो हम जो दूसरों को देख के लक्ष्य बना लेते हैं, राजा को देख के लक्ष्य बना लेता है, लेकिन राजा जब बन जाता है तब पता लगता है अरे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मुझे राज की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए फौज तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए जासूस तैयार करने पड़ेंगे, कि मेरे राज को चौपट करने के लिए दूसरे देश के लोग मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे, वो लूप होल तो नहीं खोज रहे जिस लूप होल को प्राप्त करके मेरे राज पर आक्रमण कर देंगे। तो जैसे एक राजा राज की चिंता करता है, उसी प्रकार एक परिवार की चिंता करता है, एक व्यक्ति अपने शारीरिक जीवन की चिंता करता है सुख प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। तो आप देखिए कि हम यदि अपने बचपन को याद कर लें, जब से हमको हमने होश संभाला है तो आप देखेंगे कि स्कूल जाना, टीचर की डांट सहनी, क्योंकि शैतानी कर नहीं सकते स्कूल में, वहां अटेंटिव भी रहना पड़ता है, तो टीचर तो डांट लगाएगा ही, खेलने के लिए भी खुला फील्ड नहीं मिल सकता, कुछ थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, और घर आकर फिर होमवर्क करना पड़ेगा, घर वाले भी पीछा नहीं छोड़ते, टीचर लगा देते हैं। तो एक बालक जो खेल के द्वारा खुश होता है वो खेल सकता है, खुश हो सकता है, लेकिन इतनी बाधा है उसके खेल में कि आप देखिए कि बच्चे कैसे, माता पिता उसको डिसिप्लिन में डालने की कोशिश करते हैं। तो एक बालक को भी आजादी नहीं है, और यदि अपना होश आ गया फिर कंपटीशन ही की तैयारी करता था सारी जिंदगी, और 25 साल की उम्र पता नहीं कहां चली गई इसकी, जो सुख भोगने का एक गोल्डन पीरियड था वो मेरी पढ़ाई लिखाई में खत्म हो गई, भविष्य मैंने बनाना है उसकी चिंता फिक्र में खत्म हो गई। तो कौन सा सुख का साधन है? इसीलिए यदि आप जन्म से लेकर अपने ही जन्म का विचार करके देख लें, और आज जो आपकी आयु भांत का विचार कर लें, और आगे जो आयु बची है उसका भी विचार कर लें, तो आपको खुली बुद्धि से ये बात समझ में आ जाएगी कि इस संसार में सुख बहुत कम है, दुख बेचैनी चिंता फिक्र ज्यादा है। तो इसलिए ये मानव जन्म घाटे का सौदा हुआ या नफे का सौदा हुआ? तो सब कुछ कहते हैं इस काम के लिए तो ये मानव देह दी ही नहीं गई थी तुझको, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया तो सारे पशु पक्षी के पास भी है, वो तो मस्ती से बिना पढ़े लिखे भोग रहे हैं प्रकृति का आनंद, और तू पढ़ने लिखने में लगा हुआ, तो तुझसे ज्यादा सुखी तो ये पशु पक्षी है, तो ये तो भविष्य की चिंता ही चिंता है, उनको तो भविष्य की चिंता कोई है ही। इसीलिए मानव जन्म कुछ और काम के लिए मिला था, कोई बड़ी चीज करने के लिए मिला था। वो कौन सी बड़ी चीज थी? कि मेरे अंदर वो ईश्वर सत्ता है जो शांति का सागर है, जो आनंद का सागर है। अब बताइए, जो आनंद का सागर मेरे अंदर हिलोरे मान रहा है, और संसारा सारा मुझको कौन सी विद्या पा रहा है? मन को बाहर, मन की दौड़ बाहर लगाने के लिए, इंद्रियों की दौड़ बाहर लगाने के लिए, जहां बेचैनी है, जहां असुरक्षा है, जहां जीवन का नाश है, जहां मौत है। तो अंदर जीवन का सागर मौजूद है जिसको ईश्वर कहते हैं, और बाहर मौत का सागर मौजूद है। हम सब जानते हैं कि बाहर संसारी जीवन में हमको अल्टीमेटली मौत ही फेस करनी पड़ती है। तो जीव के लिए यदि अंदर उसकी वृत्ति पहुंच गई, उसकी बुद्धि अंदर लग गई, तो जीव के लिए मौत है ही नहीं, वहां मोक्ष है, इटर्नल लाइफ है वहां पर। तो बताइए, महाजी की समाधि लगी हुई, बचपन से ही उनकी बुद्धि में होश था, पूर्वजन्म की कमाई साथ लेकर आए थे, उन्होंने संसार की तरफ देखा तक नहीं, और उनकी बुद्धि की याद रखी, जो एक बार सुन लिया या पढ़ लिया वो कभी भूलते ही नहीं। इसीलिए वो 8वीं क्लास पास जब कर रहे थे, उनका फाइनल एग्जाम था, तो हेडमास्टर उन्हीं से कह रहा है कि तुम 8वीं कक्षा की क्लास लो और इन लड़कों को एग्जाम की तैयारी कराओ। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी कि जो 8वीं क्लास का विद्यार्थी है, अभी पास नहीं किया, उसको हेडमास्टर कह रहा है कि तुम 8वीं क्लास के बच्चों की क्लास लो और इनकी एग्जाम की तैयारी कराओ, क्योंकि उनको पता था इसको सब कुछ मालूम ही। तो अब बताइए कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी उन्होंने कभी पैसे की तरफ देखा ही नहीं, इंद्रिय भोगों की तरफ कभी देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि जो बालक 9 वर्ष की आयु में रात में वापस आ रहा है घर पर, 10-10 बज जा रहे हैं, 11-11 बज जा रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है, और वो मस्ती की हालत में, माँ उनकी आंख की तरफ देती है तो माँ को संतोष हो जाता है कि इसके अंदर शांति है, उसकी आंखें देखकर माँ भी शांत हो जाती है, उसका क्रोध भी शांत हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे मंगत को कुछ नहीं होगा। तो क्या करिश्मा उसके अंदर है 9 वर्ष के बालक में? तो वही बात है कि पिछले जन्म में महाराज जी ने अंतर्यामी ईश्वर की खोज करने की कोशिश की थी, उसकी भक्ति की थी, सत विचार उनके पास था, सत विचार के अनुसार उन्होंने पुरुषार्थ करने की कोशिश करी, तो वो संस्कार जो बने मन के अंदर, और जो ज्ञान और जो निर्णय बुद्धि के अंदर हुआ, तो मन बुद्धि तो वही आई ना इस शरीर में, तो जो पूर्व जन्म की मेहनत थी वो इस जन्म की बचपन से ही काम आ गई, और खुद भी परम शांति प्राप्त की हमारे लिए भी ये परम शांति का साधन ये सत्संग शास्त्र देगा। तो मानव जन्म मिला है अंदर की यात्रा करने के लिए, पशु पक्षी का जन्म मिला है बाहर की यात्रा करने के लिए। यदि मनुष्य जन्म लेकर भी मैं केवल बाहर के सोच रहा हूं तो इसीलिए कह रहे हैं, आप इसी चैप्टर में पढ़ लीजिए, यहां महाजी लिख रहे हैं ये पशु से भी नीच है। देखिए, अगर जीवन निर्णय का ऐसा भेद नहीं समझा है और अज्ञानवाद की दृढ़ता में ही असली कल्याण चाहता हुआ जो जीवन यात्रा को व्यतीत कर रहा है वह महज एक पशु से भी नीच है। क्योंकि मनुष्य जन्म इतना ऊंचा काम करने को मिला था और मैंने क्या किया, इस संसार के भोग इकट्ठे करने में सारा वक्त गंवा दिया और सुख भी मुझे मिला नहीं, तो ये मेरा जीवन का फेल्योर है, जीवन की विफलता है। इसलिए सतपुरुष के मार्गदर्शन अनुसार हम अंदर के जीवन की सोचें, जो सत्संग के द्वारा और सिमरन के द्वारा तय होता है, तब जाकर हमको एक दिन सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, मानव जीवन प्राप्त करिए। ओम धन्य।